ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू घाटी सहित देशभर सरकारी एवं सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने का अभियान है शुरू। जोखिम वाले क्षेत्रों से हटाए गए आश्रयहीन नागरिकों के लिए भोजन आवास सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होगी, शहरी विकास मंत्रालय का कथन। कक्षा 12 की परीक्षा कल से होगी शुरू। इस साल एसईई का परिणाम इसी वैशाख के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित करने की है तैयारी। और दबाव, धमकी और घेराबंदी के माहौल में कोई वार्ता नहीं होगी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने किया साफ। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू घाटी सहित देशभर सरकारी एवं सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचे हटाने का अभियान चलाया गया है। सरकार ने पहले चरण में शनिवार से काठमांडू घाटी के विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रों में अतिक्रमित झुग्गी झोपड़ियों सहित संरचनाओं को हटाना शुरू किया। शनिवार को काठमांडू के थापाथली, सिनामंगल, गैरी गांव और शांतिनगर क्षेत्र में नदी किनारे बने अवैध ढांचे हटाए गए। इसी तरह आज नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की सहायता से सरकारी टीम ने मनोहरा नदी किनारे अतिक्रमित संरचनाओं को हटाया। काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण के विकास आयुक्त जानुका ढकाल ने बताया कि प्रारंभिक चरण में जोखिम वाले क्षेत्रों की बस्तियां हटाई जाएंगी और दूसरे चरण में भूमिहीनों की पहचान कर उचित पुनर्वास किया जाएगा। अभियान के तहत काठमांडू घाटी के साथ साथ रूपंदेही, नुआकोट, परसा सहित देश के विभिन्न स्थानों पर अवैध ढांचे हटाने का काम जारी है। शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और आवश्यकता अनुसार प्रबंधन करने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आश्रयहीन और वास्तविक समस्या में फंसे नागरिकों के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक होटल और लॉज में रहने, भोजन सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है। मदद की जरूरत वाले नागरिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस से संपर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सुनील लम्साल के सचिवालय ने दी। साथ ही सामान ढुलाई सहित त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है और वहां पंजीकरण के बाद संबंधित होटल लॉज में परिवहन सहित रहने की व्यवस्था की जा रही है। गलछी रसुआगढ़ी सड़क के पहुंच मार्ग में मौजूद अतिक्रमित संरचनाओं को हटाना शुरू किया गया है। सड़क के दाएं बाएं 15-15 मीटर के अंदर मौजूद घरों और झुग्गियों सहित भौतिक संरचनाओं को कल शनिवार से हटाना शुरू किया गया है। गलछी त्रिशूली मैलुंग सैफरुबेंसी रसुआगढ़ी सड़क परियोजना कार्यालय के प्रमुख कृष्णराज ओझा के मुताबिक सड़क पहुंच के अंदर मौजूद संरचनाओं को नियमानुसार क्षतिपूर्ति लेकर हटाने की सहमति होने के बावजूद उसका अनुसरण न करने वाली संरचनाओं को ढहना शुरू किया गया है। उन संरचनाओं में 86 व्यक्तिगत घर और झोपड़ियां, एक दर्जन सरकारी कार्यालय और संघ संस्थाओं की संरचनाएं शामिल हैं। कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कल से शुरू हो रही है। सामान्य और तकनीकी विषय समूह के नियमित एवं आंशिक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा संचालन और प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जानकारी बोर्ड के सदस्य सचिव जंग बहादुर अरियाल ने दी। उन्होंने परीक्षा को मर्यादित, व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग और समन्वय की अपील भी की। परीक्षा नियंत्रक कृष्ण प्रसाद शर्मा के अनुसार कक्षा 12 की परीक्षा में 4,18,008 विद्यार्थी शामिल होंगे। देशभर में 1,420 और जापान में एक सहित कुल 1,421 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा वैशाख 27 तक चलेगी और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम वैशाख के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। पहले बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के 3 महीने के भीतर परिणाम प्रकाशित करता था, लेकिन इस बार 1 महीने के भीतर ही परिणाम जारी करने की तैयारी है। सदस्य सचिव जंग बहादुर अरियाल के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर प्राप्तांक को कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। डेटा प्रविष्टि के बाद सत्यापन किया जाएगा और यदि कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक कल होगी। कांग्रेस मुख्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने जानकारी दी कि बैठक सुबह 11 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सनेपा में होगी। इसी दिन कांग्रेस केंद्रीय अनुशासन समिति की बैठक भी बुलाई गई है। समिति के सचिव दिनेश थापामगर के अनुसार बैठक दोपहर 2 बजे केंद्रीय कार्यालय में आयोजित होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपालकै प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका 27वां स्मृति दिवस आज मनाया गया। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान ने आज ललितपुर के सानेपा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण सहित सभा आयोजित की थी। आंधी तूफान के साथ आई ओलावृष्टि के कारण महोत्तरी के जिला मुख्यालय जलेश्वर जलमग्न हो गया है। पानी निकासी न होने के कारण जलेश्वर के नगरपालिका चौक, शंकर चौक, मीना बाजार, महेंद्र चौक, अस्पताल चौक, खैरा चौक सहित कई स्थान जलमग्न हो गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय परिसरों में भी पानी भर गया है। जलेश्वर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सामान्य बारिश में भी बाजार क्षेत्र जलमग्न हो जाया करता है। भारी बारिश के साथ आई बाढ़ से पुल बह जाने के कारण अवरुद्ध बना भोजपुर चखेवा सड़क फिर से एक तरफा संचालन में आ गया है। भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिम स्थित चालसे नहर में बीती रात अचानक आई बाढ़ से पुल बह जाने के बाद यातायात सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। स्थानीय तह के पहल पर वैकल्पिक ट्रैक खोले जाने के बाद फिलहाल छोटे वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। करीब 23 घंटे तक अवरुद्ध रहने के बाद यातायात फिर से शुरू हुआ है। खानी तथा भूगर्भ विज्ञान विभाग ने नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व, हुम्से कोट, गांवपालिका 5 स्थित धवादी में करीब 10 करोड़ मीट्रिक टन लोहे का कच्चा पदार्थ होने का अनुमान लगाया है। विभाग के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न चरणों में किए गए अध्ययन और अनुसंधान से स्थानीय नामजा कोट से धवादी क्षेत्र तक फैले करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में लौह विलेट पाए गए हैं। लौह का व्यावसायिक उत्पादन करने के उद्देश्य से धवादी फलाम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। कंपनी ने लौह भंडार पर आगे भी अनुसंधान जारी रखने की जानकारी दी है। करीब 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस खदान से 60 वर्षों तक प्रतिदिन 1500 टन लौह उत्पादन करने की क्षमता होने की जानकारी कंपनी के निर्देशक शैलेश कुमार थापा ने दी। इस परियोजना से वार्षिक 5,00,000 टन लौह उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिससे देश की मांग का करीब 25% आयात प्रतिस्थापन संभव होगा, उन्होंने बताया। वर्तमान में खदान संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का काम भी जल्द शुरू होने की जानकारी दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान ने नाकाबंदी जारी रहने तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। प्रेस टीवी के अनुसार आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता में पेजशकियान ने जोर देकर कहा कि ईरान को दबाव या धमकियों के माध्यम से किसी भी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पेजशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि शांति के मार्ग में मुख्य बाधा संवाद की कमी नहीं बल्कि वाशिंगटन द्वारा वर्तमान में की जा रही शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान दबाव, धमकियों या नाकाबंदी के तहत बातचीत में शामिल नहीं होगा। जब तक अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां और दबाव बंद नहीं होते, बातचीत का रास्ता कठिन बना रहेगा। उन्होंने अमेरिका से तनाव को बढ़ाने वाली सैन्य और आर्थिक बाधाओं को हटाकर अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को हमारी सलाह है कि वो पहले नौसैनिक नाकाबंदी सहित सभी बाधाओं को दूर करे ताकि बातचीत फिर से शुरू हो सके। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू घाटी सहित देशभर सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने का अभियान है शुरू। जोखिम वाले क्षेत्रों से हटाए गए आश्रयहीन नागरिकों के लिए भोजन आवास सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होगी, शहरी विकास मंत्रालय का कथन। कक्षा 12 की परीक्षा कल से होगी शुरू, इस साल एसईई का परिणाम इसी वैशाख के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित करने की है तैयारी। और दबाव, धमकी और घेराबंदी के माहौल में कोई वार्ता नहीं होगी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने किया साफ। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।